अगर आप कभी सिडनी स्थित मिचल लाइब्रेरी के बाहर से गुजरे तो एक घोड़े की नस्ल की याद में लगाई गई एक स्मारक पट्टी आपका ध्यान अपनी ओर अवश्य खींचेगी। और यदि आप कोलकाता जाएं तो वहां रिमाउंट रोड पर खड़े होकर अपने आप से एक सवाल जरूर पूछिएगा, इसका नाम रिमाउंट रोड क्यों है। यह नाम रखा गया है उन घोड़ों की याद में जिन्हें हम रिमाउंट या वेलर्स के नाम से जानते हैं। न्यू साउथ वेल्स से पहली बार 74 घोड़ों को 1844 में मद्रास के लिए भेजा गया। कई लोग यह भी मानते हैं कि 1844 से भी पहले, जैसे 1816 में कुछ ऑस्ट्रेलियाई व्यापारियों ने ब्रिटिश सेना के लिए घोड़े भेजे थे। ऑस्ट्रेलिया से घोड़े आयात करने से पहले ब्रिटिश फौजें मध्य एशिया से घोड़े खरीदना पसंद करती थी। ऐसा माना जाता था कि भारतीय घोड़ों की नस्ल कद काठी में छोटी और जल्द ही बीमारियों का शिकार बन जाती थी। इधर ऑस्ट्रेलिया में ब्रिटेन के ब्रम्बी घोड़े कैप्टन कुक के जहाज में 1788 में आए और धीरे धीरे अरबी, स्पेनिश और वेल्श घोड़ों के प्रजनन से एक खास किस्म की ऑस्ट्रेलियाई घोड़े की नस्ल तैयार हो गई। यह वेलर घोड़े अपनी लंबाई, सहन शक्ति और तेजी के लिए प्रसिद्ध हो गए। यह घोड़े जल्द ही ब्रिटिश सेना, खास तौर पे रिमाउंट सेना की जान बन गए। सिडनी स्थित भारतीय मूल के लेखक सुनील बादामी, जो इस विषय पर काफी शोध कर चुके हैं, के अनुसार
Whalers were actually, I guess, a lot like the early colony of Sydney. You know, they were mongrels, a bit of this and a bit of that. Horses taken from South Africa, work horses mainly from the north of England. They certainly weren't thoroughbreds, but they did have a little bit of thoroughbred blood in them. Because in the early days of the colony, of course, they were really looking for work horses and horses that could withstand often very dry conditions. So what made whalers so great was the fact that they could go for long distances carrying heavy loads without needing to drink or eat very often. And as a result, they became the horse that the Raj rode on. They were called the whaler because they came from New South Wales, and they were actually dubbed that by the Indian Army. In fact, they were the preferred cavalry and artillery horse for both the Indian Army in British India and also the Australian Army and the New Zealand Army. And they featured in the First World War in the famous Charge of the Light Brigade.
आम तौर पर इनकी कीमत 200 से 300 रुपए होती थी, परंतु मद्रास में इन्हें 600 से 700 रुपए प्रति घोड़े के हिसाब से बेचकर काफी मुनाफा कमाया गया। यह माना जा रहा था कि इन घोड़ों की नस्ल आम तौर पर भारत में मिलने वाले घोड़ों से काफी बेहतर थी।
For years and years, up from the 1840s right up until the 1950s, Australia was a major market for horses in India, not only as whalers, but also thoroughbreds, which were purchased often by very wealthy Maharajas, such as the Maharaja of Sindhya Gwalior or the Maharaja of Baroda, who owned some of the largest horse stables in the world. And Australian jockeys and trainers, like the famous George Athol Mully, also raced right up until the 1950s in India.
19वीं शताब्दी के अंत तक ब्रिटिश सेना में अंग्रेजी अफसरों के लिए ऑस्ट्रेलियाई वेलर्स घोड़े खरीद लिए गए तथा भारतीय सैनिकों को आसपास के इलाकों से लाए आम तौर पर उपलब्ध स्थानीय घोड़े दे दिए गए। ऑस्ट्रेलिया से भारत में ब्रिटिश सेना और महाराजाओं के लिए वेलर्स भेजने की होड़ सी लग गई। न्यू साउथ वेल्स के बाद वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, साउथ ऑस्ट्रेलिया और यहाँ तक कि नॉर्दर्न टेरिटरी से भी घोड़े एडिलेड में बिकने के लिए आने लगे और फिर यहाँ से इन घोड़ों को कलकत्ता के लिए भेज दिया जाता था। यह घोड़े भारत के तापमान को सह सके और उसके आदि हो जाएं, इसके लिए इन्हें अक्टूबर से जनवरी के महीने में ही ऑस्ट्रेलियाई जहाजों में भेजा जाता था। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया से भारत तक घोड़े पहुंचाना आसान काम था, तो यह सही नहीं होगा। ट्रेन, जहाज, कर्मचारी, घोड़ों का खाना और अन्य खर्चे मिलाकर लगभग 10,000 पाउंड्स तक का व्यय एक व्यापारी को करना पड़ता था। परंतु इन घोड़ों की भारत में मांग और मुनाफे के सामने यह रकम कुछ भी नहीं थी।
Obviously, to ship horses from New South Wales to India involved a lot of cost because you had to feed the horse for the 2 or 3 weeks it took you to get to India, to the two main ports of, realistically, the two main ports from Australia were always Madras or Bombay. So it was going to cost a lot of money to get those horses to India, I think there was a premium on whalers because they were so in demand.
1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सेना ने पाया कि मारे गए घोड़ों को ऑस्ट्रेलिया से लाए गए व्हेलर्स से फौरन बदली किया जा सकता है। भारत से ऑस्ट्रेलिया की समुद्री मार्ग से नजदीकी जैसे एक वरदान सी थी। ब्रिटिश सेना में भेदभाव का उदाहरण घोड़ों के इस्तेमाल में भी देखा जा सकता है।
It's interesting, isn't it? Because when you think of one of the most famous Indian cavalry regiments, it's Skinner's Horse. Although Skinner himself was never allowed to be a member of the Indian Army under the East India Company because he was, well, part Indian, and especially after, or you know, Eurasian, as they called him. And what's interesting is that after the First War of Independence, also known as the Sepoy Mutiny in 1857, there was a restriction on Indians and Anglo-Indians being in the British Indian Army. And that's why a lot of Anglo-Indians, as they later became known, featured so heavily in the police and the railways because they weren't permitted to join the army.
1900 के प्रारंभ में भारतीय राजाओं और महाराजाओं को शांत करने के लिए लॉर्ड कर्जन महारानी विक्टोरिया के आदेश पर एक इंपीरियल कैडेट कोर की संरचना में लग गए। इसमें उच्च वर्गीय और कुलीन भारतीयों को, जिसमें अधिकतर उत्तर भारत के छोटे और बड़े राजा और राजकुमार शामिल थे, अंग्रेजी अफसरों के बराबर का दर्जा दिया गया। बस फिर क्या था, 6 फुट या उससे भी लंबे रोबीले राजकुमार और उनके सेवकों को तो वेलर्स इतने ज्यादा भाए कि वह बन गए पोलो की शानदार सवारी। कहा जाता है आगरा में ताजमहल की छांव में उस समय एक पोलो ग्राउंड हुआ करता था जिस पर अंग्रेजी अफसरों, भारतीय राजकुमारों और जनता की रौनक सी लग जाती थी इन मैचों को देखने के लिए। आज हम सिर्फ इसकी कल्पना ही कर सकते हैं।
There was actually a really famous polo match between the British Indian Army and I have a feeling it might have been the Maharaja of Jaipur. Either Jaipur or one of those Rajasthani princely states, in which the Maharaja's team won in a really thrilling finish by 1 point, 1 goal. And it was a big scandal because obviously the British felt that they had been done over. They weren't very congratulatory to the Indians for winning. There was some kind of inference that, you know, the Indians had somehow cheated by having better horses.
In Ghodo aur Bharatiya Sainikon ne ब्रिटिश सेना के लिए द्वितीय विश्व युद्ध में भी जी जान से काम किया, परंतु द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत को आजादी मिलने तक ऑस्ट्रेलियाई घोड़ों की यह बेहतरीन नस्ल भारत में काफी मात्रा में उपलब्ध थी।
इंडियंस इन वर्ल्ड वॉर वन ड्यूरिंग द गैलिपोली कैंपेन एंड व्हाट अ लॉट ऑफ पीपल डोंट नो इज दैट सिम्पसन, फेमस फॉर हिज डोंकी हु यूज्ड टू कैरी वाउंडेड सोल्जर्स ऑफ द बैटलफील्ड, एक्चुअली स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन कैंप विद Indian bearers who trained and looked after the donkeys.
आजादी मिलने के साथ ही भारतीय सेना को आधुनिक बनाने का काम तेजी पर था, लेकिन फिर भी यह घोड़े सीमा सुरक्षा बल, भारतीय पोलो टीम और घुड़सवारी दस्तों में काफी समय तक रहे।